तो मैं आपके समक्ष यह कह रहे थे कि हनुमान जी प्रकाश के भूखे भी हैं और उसके संरक्षक भी। वे जो सूर्य की ओर छलांग मारते हैं वह मानो उनकी बुद्धि की भूख है, प्रकाश भी भूख है और इस भूख को मिटाने के लिए उनका सूरज की ओर ऊपर जाना है। मनुष्य में ज्ञान की भूख तो होती है पर वह भूख कभी कभी उसका अभिमान बनकर के जीवन में प्रकट होता है। मनुष्य ज्ञानार्जन करता है, पांडित्य अपने जीवन में धारण करता है पर उसका लक्ष्य यदि केवल पांडित्य का प्रदर्शन करना है और उस पांडित्य के माध्यम से संसार के विषय भोगों को इकट्ठा करना है तो यह तो गिद्ध की दृष्टि के समान ही हुआ जो अपने डैनों से बहुत ऊपर उठता है और तेज नजरों से जमीन में पड़े हुए मुर्दे को ही देखता है। इसीलिए यहां पर जो बात कही गई हनुमान जी के संदर्भ में वह बड़ी मननीय बात है। प्रभु से उनका मिलन होता है। हम किष्किंधा महाकांड में पढ़ते हैं कि कैसे वे पहले मिलते हैं। शबरी ने सीता जी का पता दिया, पता यूं दिया कि यह कहा कि सीता जी का पता कैसे लगेगा, यह भी मानो पता बताने के ही समान है। प्रभु श्री राम और किसी से सीता जी का पता पूछे न पूछे शबरी से पूछते हैं और यह भी विचित्र बात है कि शबरी क्या बताएगी, परंतु फिर भी शबरी ने इतना तो कहा, मम पार्श्व रहि जाहु रघुराई तह हुई सुग्रीव मिटाई। आप जाइए पंपासर में, वहां पर सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी और फिर यह सुग्रीव सीता जी का पता लगाने में आपकी सहायता करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि पता है शबरी जी को कि सीता जी का पता कौन लगवा सकता है। बाली का नाम नहीं लिया, बाली तो कपियों का राजा है, अत्यंत समर्थ है, शक्तिशाली है। सुग्रीव तो खदेड़े हुए हैं, विश्वमुख पर्वत पर जाकर के किसी कोने में बैठे हैं, परंतु यह जो शबरी है वह बाली के पास जाने के लिए नहीं कहती, कहती है कि सुग्रीव के पास चले जाइए, मित्रता कीजिए और उससे सीता जी का पता चल सकेगा। और तब प्रभु आगे बढ़ते हैं,
आगे चले बहुत रघुराया ऋषि मुख पर्वत निराया कर सचिव सहित सुग्रीवा आवत देख अतुल बल सीमा अति सदीति
कपीश पत्रिका में ये जो कपीश बाली है वह कर्म है, कर्म का प्रतीक है। कर्म में अहंकार होता है, अभिमान होता है और प्रभु राम ने तो बाली से कह दिया कि मूल तो ही अति से अभिमान, तू केवल अभिमानी ही नहीं है, तू अतिशय अभिमानी है। और यह जो विशेषण प्रभु लगा देते हैं बाली के साथ यह मानो कर्म का ही दिग्दर्शन है, कर्म के दर्शन को हमारे समक्ष प्रकट करने वाला है। यह कर्म कैसा है, जीव के पीछे जीव को सतत खदेड़ता हुआ यह चला जा रहा है। कर्म से संतुष्ट होकर के जीव भागता है इधर और उधर, परंतु कहीं पर भी ऐसा स्थान जीव को नहीं दिखाई देता जहां पर कर्म से उसे छुटकारा मिले। एक स्थान है, कहते हैं वह ऋष्यमुख पर्वत है, यह सत्संग है। ऋष्यमुख सत्संग का प्रतीक है। जब जीव सत्संग में होता है तो थोड़ी देर के लिए कर्म का पीछा छूट जाता है। जब आपका मन सत्संग में रमा होता है तो कर्म की चिंताएं छूटी रहती हैं। पर जो भी आप सत्संग के ऋष्यमुख पर्वत से नीचे उतरते हैं कि कर्म का बाली आपके पीछे फिर चलने लगता है, पुनः चिंताएं छा जाती हैं। थोड़ी देर के लिए मन सत्संग में रमा रहा तो बाली का पता नहीं चला था, सत्संग समाप्त हुआ कि कर्म का बाली पुनः हमारा पीछा करता है तो बाली को श्राप है कि तुम ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं जा सकते। सुग्रीव ने इसी ने कहा, देखो हनुमान, वो पुरुष दिवल आ रहे हैं, वीर हैं, अत्यंत देखने में सुंदर हैं, कहीं बाली ने न भेज दिया हो कि मैं तो नहीं जा सकता और इसलिए इन दोनों को भेज दिया हो। सुग्रीव कहते हैं तुम जाओ, अच्छी तरह से जान लो, ब्राह्मण का रूप धर करके जाओ और यदि तुम्हें ऐसा मालूम पड़े कि ये बाली के भेजे हुए हैं तो केवल इशारा कर देना, आने की आवश्यकता नहीं। सुग्रीव बड़े भयभीत है, जीव बड़ा भयभीत है। सुग्रीव को डर है कि जब तक हनुमान बताने के लिए आएंगे तब तक तो भागने के लिए समय ही नहीं रहेगा, तो कहते हैं कि तुम केवल इशारा करके बता देना, अगर ये बाली के भेजे हुए हो, मुझे मारने के लिए आए हो, तो मैं तो इस पर्वत को छोड़ करके भाग जाऊंगा। यह भय सुग्रीव के जीवन में भरा है और उधर बाली है। पर प्रभु ने चुनाव किया सुग्रीव का, शबरी जी ने चुनाव किया सुग्रीव का, बाली का चुनाव नहीं किया। अभिमान के साथ प्रभु जाना पसंद नहीं करते हैं, वहां पर कितना भी बल क्यों ना हो, वे तो दुर्बलता पसंद करते हैं। जहां पर व्यक्ति समर्पित हो, प्रभु पर आश्रित हो, और इसीलिए उन्होंने सुग्रीव का चुनाव किया। और सबसे रक्षा कारण सुग्रीव को देने का यह था कि परम संत हनुमंत का आशीर्वाद सुग्रीव को प्राप्त था। सुग्रीव ने सब कुछ छोड़ा, राज्यपाट छोड़ दिया, परंतु हनुमान का साथ छोड़ने पसंद नहीं था। उन्होंने हनुमान से कहा कि तुम तो मेरे साथ ही बने रहो, ये जो संत को लेकर के जीव का चलना है, भले जीव बहुत विपदाओं से घिरा हुआ हो, भले ही उसके जीवन में तरह तरह की विपन्नताएं हो, परंतु यदि संत पर उसका विश्वास बना हुआ है तो जीव की यह विपन्नता प्रभु की कृपा से दूर हो ही जाती है। और इसीलिए प्रभु चुनाव करते हैं सुग्रीव का। वे कहते हैं कि चल करके आते हैं। सुग्रीव ने देखा हनुमान जी वट रूप धारण करके आते हैं, ब्राह्मण का रूप धारण किया। किस लिए किया? बाली भले ही अभिमानी था, पर्वत दैत्यों से भिन्न था, राक्षसों से भिन्न था, ब्राह्मणों को नहीं सताता था, और इसीलिए सुग्रीव ने कहा कि हनुमान तुम ब्राह्मण का रूप धर करके चले जाओ, बाली के भेजे हुए भी यदि ये होंगे तो तुम्हें नहीं सताएंगे और तुम ठीक इनका परिचय प्राप्त कर लोगे। और यह जो परिचय प्राप्त कर लेना है, यह हम देखते हैं कि किस प्रकार विप्र रूप धारण करके जाते हैं हनुमान जी। और वहां पर विप्र रूप धरि कपित गय वो माथ नाई पूछत अस भय वो, पूछते हैं तो तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिरूरा। प्रभु तो अंतर्यामी है, जो ही प्रश्न सुना उनके अजरों पर हंसी खेल गई और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, तुमने रूप तो अच्छा धारण किया है परंतु अभिनय तुम ठीक रूप के अनुसार नहीं कर पाए हो, क्या त्रुटि हो गई? ब्राह्मण का रूप तो लिया, मैं क्षत्रिय हूं, थोड़ी देर रुक जाना था, मैं तुम्हें प्रणाम करता, पर तुम
तुमने ही मुझे प्रथम प्रणाम कर दिया और इधर ब्राह्मण रूप लिया है, तो रूप तो तुमने ठीक लिया परंतु तुम अभिनय करने में उतने ठीक नहीं रहे। हनुमान जी भी तो कम चतुर नहीं है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। उन्होंने कहा कि प्रभु यह जो मैंने प्रणाम किया है यह कोई इसलिए तो नहीं प्रणाम किया है कि मैं ब्राह्मण रूपधारी हूं, अथवा इसलिए भी नहीं कि आप यहां पर हैं, तो यह मैंने किसी प्रकार की भूल नहीं की। प्रभु बोले तुमने भूल नहीं की, ब्राह्मण देवता यह तुम बड़ी विचित्र बात करते हो। जब तुमने अभिनय में रूप ही धारण किया तो तुम्हें उस रूप की मर्यादा का पालन तो करना था। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज मेरा सिर जब झुकता है तो एक ही के पास झुकता है और वह सिर झुक करके बता देता है कि जिसके सामने सिर झुक रहा है वह कौन है। प्रभु ने कहा कि बताओ मैं कौन हूं। जब तुम्हारा सिर झुक ही गया है ब्राह्मण देवता तो तुम ही बता दो कि फिर मैं कौन हूं। प्रश्न के माध्यम से उत्तर तो दे दिया कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। सिर झुक करके यही बता रहा है कि या तो आप तीन देवताओं में से दो हैं या फिर आप नर और नारायण हैं अथवा आप वही साक्षात ब्रह्म हैं भुवनपति हैं। इस संसार पर कृपा करने के लिए आपने मनुष्य रूप धारण किया है, मेरा सिर यही तो झुक करके बता रहा है। फिर प्रभु आपके साथ जो हैं वे जीवों के आचार्य हैं। बड़ी अद्भुत बात हनुमान जी कहते हैं ये आचार्य हैं और जीवों के आचार्य हैं, तो जीव अपने आचार्य से ही तो पूछता है, आचार्य से पूछता है कि वह तत्व क्या है। गीता में कहा अगर उस तत्व को जानना है तो जानने की प्रक्रिया का पूरा पालन होना चाहिए। वह प्रक्रिया कौन सी है उस तत्व को जानने की? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और इसीलिए मैंने पहले प्रणिपात किया और फिर पूछा को तुम श्यामल गौर शरीरा, मैंने यह प्रश्न किया है और इसलिए प्रभु मैंने शास्त्र की परंपरा की जो मर्यादा है उसकी रक्षा की है सिर नवा करके। और फिर देखिए नाथ यदि आप कहते हैं कि मैंने ब्राह्मण रूप धारण किया है और आप क्षत्रिय के सामने मैंने सिर झुका दिया है तो मैं एक बात कहूं, जैसे ब्राह्मण का रूप ही धारण किया है ब्राह्मण नहीं हूं, वैसे भी आप भी क्षत्रिय रूप ही धारण करने वाले हो क्षत्रिय नहीं हो। मैंने तो पहले ही कहा कि क्षत्रिय रूप फिरहु बनबीरा, आप क्षत्रिय नहीं हैं, आपने केवल क्षत्रिय का रूप ही धारण किया है और इसलिए यदि रूप धारण करने की ही बात हो तो उसमें भी मर्यादा खंडित नहीं होती। और मैंने तो आपको पहचान लिया है कि आप वही ब्रह्म है भुवनपति है, इस विश्व पर कल्याण करने के लिए जीवों का कल्याण करने के लिए यह मनुष्य रूप धारण किया है। प्रभु ठठा करके हंस पड़े, ब्राह्मण देवता तुम्हें बहुत बड़ा भ्रम हो गया है, ऐसा लगता है कि जीवन में पहली बार तुम कहीं पर भूल कर रहे हो। हम परिचय दें, तुमने हरा परिचय दिया तो हम तुम्हें अपना परिचय देते हैं। तुम ब्रह्म की बात कहते हो, ब्रह्म कैसा है लक्षण मिला करके देखो, वह अजन्मा होता है, ब्रह्म सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है, ब्रह्म सर्वशक्तिशाली होता है, ब्रह्म सर्वज्ञ होता है। ब्रह्म के अंदर में हम कृष्ण लगते हैं कि वह अजन्मा है, वह सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वह सर्वशक्ता शक्तिशाली है, वह सर्वज्ञ है। और हम अपना परिचय दें, तुम हमें ब्रह्म कहते हो। कोसलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए, यहां हरि निशिचर बैदेही विप्र फिरही हम खोजतते। लगा लो लक्षण, तुमने तो कहा हम ब्रह्म है, ब्रह्म जन्मा होता है और हम ऐसे ब्रह्म है कि कौशल नरेश के यहां पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले ब्रह्म है। पहला लक्षण लगा ब्राह्मण देवता। दूसरा लक्षण होता है कि ब्रह्म सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है। हम ऐसे ब्रह्म है कि पिता ने हमें आज्ञा दी वन में चले जाओ, और आज्ञा को शिरोधार्य करके हम जंगल में आए हैं, तो तुमने हमारी सर्वतंत्र स्वतंत्रता भी देखी। ब्रह्म सर्वशक्तिशाली होता है और हम इतने शक्तिशाली हैं ब्राह्मण देवता कि अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, कोई हमारी पत्नी को चुरा करके ले गया है, और हम इतने सर्वज्ञ हैं कि हम लताओं जीवों से पूछते हुए विचर रहे हैं कि हमारी पत्नी कहां है, सीता कहां है, अब तुम लगा करके देख लो। और जब प्रभु ने कहा अधरों पर मुस्कान खेल रही है, तब पर गई करना सो सुख उमा जाई नहीं बरना। कहते हैं शंकर जी, हनुमान जी अत्यंत आकुल होकर के प्रभु के चरणों पर गिर पड़ते हैं और गह लेते हैं, गही चरणा, प्रभु के चरणों को जोरों से पकड़ लिया। उमा, यह जो सुख हनुमान के अंतर में हो रहा है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान के अंतर में हो रहा है, प्रकारांतर से भगवान शिव के अंतर में हो रहा है। एक रूप से उन्होंने हनुमान का ही तो रूप धारण किया है, और इसलिए हनुमान का सारा सुख शंकर जी का सुख है। कहते हैं उस सुख का वर्णन कैसे करें, वह सुख तो केवल अनुभूति गम्य है। और हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु के चरणों पर गिरने का वर्णन तो मिलता है अन्य स्थानों पर, अस कई चरण परे अकुलाई निज तन प्रकट प्रीति उर छाई, सुन प्रभु बचन बिलो की मुख गात हरसी हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत। चरणों पर आकुल होकर के गिरने का प्रसंग कई जगह आता है, पर चरणों में गिर करके चरणों को पकड़ने का प्रसंग केवल यहीं पर है। गह लिया, छोड़ नहीं रहे हैं, पकड़ लिया है। कहा किसी ने कि हनुमान जी आपने प्रभु के चरण पकड़ लिए, आप छोड़ते ही नहीं थे, प्रभु तो उठाना चाहते थे, तो यह जो आपने पकड़ लिया। कहा कि भैया अभी तक तो हमने ब्रह्म की परिभाषा ही सुनी थी, ब्रह्म कैसा है। कहा कि नेति नेति जही निगम निरूपा, नेति नेति जही निगम निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, मन समेत जहि जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कहि कहई। कहते हैं जो तिहु काल एक रस यह ब्रह्म की वहां पर उपमा दी गई है। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, नेति नेति के द्वारा शास्त्रों ने पुकारा है, तीनों काल में एक रस ही रहता है। तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसा जो ब्रह्म है वह तो कभी पकड़ में आने का नहीं, पर जो ब्रह्म मेरे सामने खड़ा था मैंने तो समझ लिया कि बस यही ब्रह्म पकड़ने के योग्य है, जो किसी की आज्ञा मान करके जंगल में जा सकता है, किसी के विरह में रोकर के किसी को खोज सकता है। मुझे उस ब्रह्म की कोई आवश्यकता नहीं जो सबको उपेक्षा की दृष्टि से देखता हो या एक रस की दृष्टि से देखता हो, चाहे एक रस कहें या उपेक्षा कहें, यह केवल शब्दों का अंतर है। जो एक रस है, किसी के प्रति जिसका कोई लगाव नहीं है, ऐसा वह ब्रह्म है। पर सामने जो ब्रह्म खड़ा दिखाई दिया उसका तो इतना लगाव कि जो रुदन कर रहा था, जो किसी को खोज रहा था, जो किसी की आज्ञा मान करके जंगल जंगल में भटक रहा था, मैंने सोचा कि यह ब्रह्म ही ठीक पकड़ने योग्य है, और इसीलिए मैंने उस ब्रह्म के चरणों को पकड़ लिया। पकड़ तो लिया, प्रभु कहते हैं कि एक लक्षण तो मिल नहीं रहा है ब्राह्मण देवता, और तुम मुझे ब्रह्म ब्रह्म कहते हो, अरे उठो भी, अपना परिचय तो दो। और तब भी जिस समय हनुमान जी ने देखा कि प्रभु मुझे नहीं पहचान पा रहे हैं और बारंबार मुझसे मेरा परिचय पूछते हैं, तो दुखित होकर के कहते हैं मोर म्याऊं मैं पूछा साई तुम कस पूछो नर की नाई तब माया बस फिर भुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हनुमान जी को लगा कि शायद मैं पहले पहचान नहीं सका था, प्रभु क्या इसीलिए रुष्ट हैं? तो इसीलिए क्या बारंबार मुझसे कहते हैं कि ब्राह्मण देवता अपना परिचय दो? कहा कि मैं तो एकदम जीव हूं, अज्ञ हूं प्रभु, मैं यदि परिचय पूछूं आपका तो वह शोभा देता है, पर आपको मेरा परिचय पूछना शोभा नहीं देता। ईश्वर जीव से कहे कि जीव तू कौन है, यह तो ईश्वर के लिए शोभा नहीं देता प्रभु। और तब प्रभु के अधरों पर हंसी खेल उठती है, कहते हैं कि जो भी हो ब्राह्मण देवता, तुम तो जानते हो जब तुमने जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं तो तुम तो यह जानते हो मैंने शास्त्र मुख से तो यह कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् कि मेरा तो यह नियम है कि जो भक्त मेरी तरफ जिस प्रकार से आता है मैं भी उसकी तरफ उसी प्रकार से जाता हूं। तुमने मेरा परिचय पूछा तो इसलिए मैंने भी तुम्हारा परिचय पूछा, यह तो शिष्टाचार है। तुमने पूछ दिया कि को तुम, इसलिए मैं भी पूछता हूं कि को तुम कौन हो ब्राह्मण देवता, इसमें तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं मालूम पड़नी चाहिए, यह तो शिष्टाचार है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् यह तो मेरा प्रण है। पकड़ लिया हनुमान जी, प्रभु बस यह ठीक है ना, आपका यह व्रत है ना, तो इस व्रत को आप मुझ पर भी लगाइएगा। क्या लगाने का मतलब है ब्राह्मण देवता तुम्हारा? मतलब यह है महाराज, आप बारंबार कहते हैं कि देखो ब्रह्म का लक्षण तो तुमने देख लिया, और मुझ पर कस करके देख लो ब्रह्म का लक्षण लगता है कि नहीं, और ब्राह्मण देवता ये तुम्हारे चारों ब्रह्म के लक्षण मुझ पर लगते नहीं, तो महाराज ये ब्रह्म के लक्षण आप पर न लगते हो, पर मैंने तो आपको ब्रह्म मान लिया है, इसी प्रकार मैं आपका सेवक हूं, सेवक के लक्षण अगर मुझ पर न लगे महाराज तो भी अपना सेवक मुझे मान लेना, तुम्हारी ही बात रहे कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् इसी की रक्षा कर लीजिएगा कि मैंने आपको ब्रह्म मान लिया, भले ही ब्रह्म का लक्षण आप पर न लगता हो और ब्रह्म के जो लक्षण है वे विरोधी रूप से आप पर लगते हो, इसी प्रकार अगर सेवक का कोई लक्षण मुझ में न दिखाई दे और सेवक के विपरीत लक्षण मुझ में दिखाई देते हो तो भी कृपा करके मुझको सेवक मान लीजिएगा, बस इतनी प्रार्थना है। और तब प्रभु कहते हैं कि तुम ब्राह्मण देवता बड़े चतुर हो, अपना परिचय छिपाते जा रहे हो, तुम्हारे मुंह से तुम्हारा परिचय तो मैं सुनना ही चाहता हूं। और तब हनुमान जी कह उठते हैं एक मैं मंद, परिचय अपना देने वाले हैं, वे कह सकते थे कि मैं पवन सुत हूं, कह सकते थे कि मैं मरुत का पुत्र हूं, मानो मरुत एक देवता और देवता के पुत्र के रूप में अपना परिचय भी प्रदान कर सकते थे, पर अभिमान का इतना राहित्य है, अभिमान का इतना अभाव है हनुमान जी के जीवन में, यह भी वे नहीं कह सके, केवल कहते हैं कि एक मैं मंद। और प्रभु सुनकर के हंस उठते हैं कि ब्राह्मण देवता तुम अपना परिचय दे रहे हो और तुम जो कहते हो मैं समझ गया, यही ना कि तुम मरुत सुत हो, तुम पवन सुत हो, पर तुम अपना परिचय दे रहे हो ना, अपनी प्रशंसा कर रहे हो। महाराज मैंने यह कोई अपनी प्रशंसा की, मैं तो परिचय ही देने चला। भगवान ने हंस करके कहा कि देखो जो मरुत है जो पवन है उसके तीन गुण होते हैं और तुमने तो गुण से ही वर्णन करना शुरू किया। पवन अगर मंद होता है तो वह पवन का गुण होता है, पवन जोरों से बहे तो किसी को अच्छा नहीं लगता, बुद्धि की मंदता एक दोष है पर ममन पवन की मंदता गुण है, और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुमने तो अपनी प्रशंसा करनी शुरू कर दी तो फिर एक ही गुण क्यों बताते हो, और भी कहो शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, ये तीन गुण हैं पवन के, शीतलता गुण है, मंदता गुण है और उसी प्रकार सौरभ उसका गुण है, तो बाकी दोनों गुणों को छिपा लिया तुमने। और तब हनुमान जी कहते हैं महाराज वे दो गुण मुझ में होते तब न मैं आपको बताता, मेरा गुण तो केवल मंदता है, पवन मंद बहे या जोरों से बहे, पवन के भीतर में कोई शीतलता नहीं है, पवन के भीतर में कोई सौरभ नहीं है, तो वो वह तो सौरभ उधार लिया हुआ है, पवन कहीं पर यदि शीतलता ले जाता है तो शीतलता उधार ली हुई है, यदि पवन का गुण शीतलता ही होती तो पवन कभी भी गर्मी प्रदान नहीं करता प्रभु, परंतु पवन गर्मी भी प्रदान करता है। इसका मतलब है कि यह जो शीतलता है वह उधार लिया हुआ गुण है। यह जो सौरभ है, यदि पवन का यह गुण सौरभ होता तब तो कभी भी वह एक दुर्गंध का विस्तार नहीं कर पाता, पर हम देखते हैं कि इस पवन के द्वारा दुर्गंध का भी विस्तार होता है। इसलिए आप जान लीजिए कि सौरभ पवन का गुण नहीं है, और इसलिए प्रभु मैं तो केवल मंदई हूं। यदि कोई मुझसे सौरभ पाता है तो वह आपका दिया हुआ सौरभ है, यदि कोई मुझसे शीतलता प्राप्त करता है तो वह आपकी दी हुई शीतलता है प्रभु। और यह कहकर के वे प्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं एक मंद मोह बस कुचिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोहि बिसारियो दीन बंधु भगवान। यद्यपि, जहां पर वे कहते हैं यद्यपि मुझमें बहुत से अवगुण है नाथ, परंतु यह तो प्रभु की कृपा होती है, यह तो स्वामी का अनुग्रह सेवक पर होता है कि वह उसके दोषों को मानो क्षमा कर दिया करता है। तो मैं तो उसी प्रकार मेरे जीवन में बहुत से अवगुण भरे हुए हैं, पर आपकी कृपा मुझ पर हो, आप उन अवगुणों को दूर कर दें, क्षमा कर दें। यह कहते हुए और विनय करके जिस समय हनुमान जी प्रभु के चरणों पर गिर पड़ते हैं, अस कहीं चरण परे गई चरणा परे बिकलाई, और जहां पर कहते हैं कि जब इतने विकल होकर के गिर पड़े तब कहा कि उस समय फिर तब रघुपति उठाए उर लावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा। उठा लेते हैं हनुमान जी को, अपने हृदय से लगा लेते हैं, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, और जिस समय हृदय से लगा लेते हैं रोमांच हो आता है हनुमान जी को, पुलक होने लगता है सारे गात्र में, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मानो पुलकावली लग जाती है। गोस्वामी जी की भाषा में कहते हैं विनय पत्रिका में कि पुलकावली जैसे पुलक वाचिका, मानो वाचिका होती है जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की लताएं भिन्न भिन्न वृक्ष और पौधे होते हैं, मानो उसी प्रकार जब शरीर में रोमांच हो गया ये रोंगटे खड़े हो गए, मानो यह पुलक वाचिका लग गई। अब यह जो पुलक वाचिका लग गई, हनुमान जी तो कहते हैं महाराज अब यह पुलक वाचिका तो आपने लगा दी, आपने हृदय से लगा लिया, मेरे सारे गात्र को आपने रोमांचित कर दिया है, पर देखिए मेरे भीतर इस पुलक वाचिका को सींचने के लिए कोई जल नहीं है, इतना ताप है मेरे भीतर में। हनुमान जी के भीतर में विरह का इतना ताप था कि सब सूख गया था। यह एक विलक्षण दृश्य दिखाई देता है रामचरितमानस में कि भक्त रो रहा है और भगवान रो रहे हैं। यह दृश्य भी दिखाई देता है भक्त रो रहा है और भगवान की आंखों में आंसू नहीं, यह दृश्य भी दिखाई देता है, पर यह दृश्य और कहीं पर नहीं दिखाई देता कि भक्त की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं और भगवान की आंखों से अश्रुधार बह रही हो। यह केवल यही एक दृश्य है, हनुमान जी की आंखों में कोई आंसू की बूंद नहीं और भगवान हृदय से लगा करके और इतना आंसू बहा रहे हैं, निज लोचन जल सींच जुड़ावा, मानो वहां पर सींचते हैं। वह जो पुलक वाचिका लग गई है हनुमान जी के गात्र में, उस पुलक वाचिका का सिंचन करते हैं और सिंचन करके उसे जुड़ा देते हैं। और इसीलिए तो हनुमान जी कहते हैं महाराज यह जो शीतलता कोई मुझसे प्राप्त करता है तो यह आपकी दी हुई शीतलता है, आपने सींच करके इसे जुड़ा दिया है। जिस समय वे जाते हैं माता जानकी जी के पास, माता जानकी कहती है तो ही देख शीतल भई छाती, तुझे देख करके मेरी छाती शीतल हो गई। तो हनुमान जी का कहना है प्रभु यह शीतलता आपकी दी हुई है, और यदि कोई मुझमें किसी प्रकार का सौरभ देखता है तो आपका दिया हुआ सौरभ है। हनुमान जी इतने निराभिमानी, उनका रूप अपना रूप नहीं। किसी ने कहा कि हनुमान जी आपने यह रूप धारण किया बंदर का, भगवान की सेवा ही करनी थी तो और कोई भी सुंदर रूप आप धारण कर सकते थे। हनुमान जी ने कहा कि भाई ऐसी बात है, मैं प्रभु की सेवा तो करना चाहता था, पर अगर मैंने सुंदर रूप धारण किया होता तो लोग भगवान के रूप का ध्यान करने के बदले कदाचित मेरे रूप का ध्यान कर बैठते, तो यह तो मेरे लिए बहुत अपराध की बात होती। अरे मेरा रूप क्या रूप, इसीलिए मैंने यह रूप धारण किया कि बंदर का रूप भी कोई रूप है। रूप है। बंदर का नाम भी कोई नाम है। हम देखेंगे विभीषण जी के प्रसंग में कि जिस समय नाम पूछते नाम बताते ही नहीं है। रावण को अंत तक हनुमान जी के नाम का पता ही नहीं चला था, इतने निरभिमान और इतना शौर्य जीवन में, पर इतना निरभिमान कि कोई उनके नाम को जान तक नहीं सका था। ये हनुमान जी हैं प्रभु अब।